मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 3 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं एक मित्र कृतिका का जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं और जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को नियमित रूप से मैं आप सबको कुछ सूचनाएं दिया करता हूं, तो पहले मैं कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा और सूचनाओं के तहत यह कि कल और परसों 2 दिन छुट्टी के दिन है तो डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको कल एज इट इज मिलेंगी। साथ ही योजना के आपको 2 आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी आपको 2 आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर आपको एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, जिसे हम सब हिंदी में अफसपा कानून कहते हैं। लेकिन इससे पहले जो एक दो थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज में भी सुना होगा कि हमारे देश में 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, युवा इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्रयोगशाला में इंटर्नशिप से लेकर के जो डायरेक्टर तक के पद पर लोग होंगे उनकी जो उम्र होगी अधिकतम वो 35 वर्ष की ही होगी। यानी कि यूं कह लीजिए कि यहां रहने वाले जो युवा, काम करने वाले जो युवा होंगे वो चाहे कोई भी काम कर रहे हों सबके सब युवा हैं, रहने वाले वैज्ञानिक जो होंगे आप कह लीजिए। ये 5 स्थानों पर शुरू किए गए हैं, नाम आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि प्रिय में कभी कभी इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। 3 तो बिल्कुल साउथ के ही हैं, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। इन्हें याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। 4th है मुंबई, वो उससे सटा हुआ थोड़ा सा ऊपर है, और इसके बाद है कोलकाता। ये 5 केंद्र बनाए गए हैं युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला के। यहां मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा, 3-4 दिन पहले ये बातें अखबारों में आ रही थी धीरे धीरे, और अब धीरे धीरे वो जोर पकड़ने लगी है, और वो ये कि चीन ने अपने वैज्ञानिकों को, ऐसे वैज्ञानिकों को जो देश से बाहर हैं, उनसे कहा है कि वे अपने देश लौट आए, यानी कि वो चीन लौट आए। और चीन ने जब ये बात कही है, चीन की सरकार ने, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी वहां के वैज्ञानिकों ने दिया है और वो चीन यानी कि अपने देश लौटने लगे हैं। हाँ, अमेरिका से लौटकर आने वालों की संख्या बहुत कम है। चीन ने ऐसा क्यों किया? अखबारों में आपको अक्सर पढ़ने को मिलता होगा, लेख में भी, कि चीन जो अपनी ताकत जो समझ रहा है और चीन का जो फैलाव पूरी दुनिया में इतनी तेजी के साथ हो रहा है, सैन्य शक्ति के रूप में भी, आर्थिक शक्ति के रूप में भी, तो उसके केंद्र में वहां के वैज्ञानिक हैं। वो टेक्नोलॉजी पर इतना अधिक खर्च कर रहा है, इतना अधिक ध्यान दे रहा है कि उसकी स्थिति आप कह लीजिए कि अमेरिका से टक्कर लेने की पैदा हो गई है। और जो 5G टेक्निक है आप देखिए कि उसके कारण तो चीन की ताकत ऐसा लग रहा है जैसे कई गुना ज्यादा बढ़ गई हो। तो चीन इस बात को समझ रहा है कि अगर देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है, दुनिया में अपनी पहचान और अपनी शक्ति स्थापित करनी है, तो यह वैज्ञानिकों के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो चूंकि यहां हम युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि यह रेफरेंस भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो दैनिक भास्कर में छपा है, नीलेश शाह का। आर्टिकल का शीर्षक हालांकि है सोने पर खर्च की बजाय उसे पूंजी में बदलें, लेकिन सोने पर इससे यानी कि गोल्ड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसमें एक बात बहुत अच्छी बताई गई है ना, वो कहीं आपसे मिस न हो जाए इसलिए मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाह रहा हूं, और वो ये कि इस आर्टिकल में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि भारत को अपनी आर्थिक गति, अपनी आर्थिक रफ्तार को गति देने के लिए, तेज करने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ बातें तो इसमें आपको नई सी लग सकती हैं, हालांकि कुछ बातें आपको पुरानी भी लगेंगी। देखिए, उन्होंने 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, मैं जल्दी जल्दी में आपको बता देता हूं। पहला तो उन्होंने कहा है कि हम गोल्ड का बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम कोल यानी कि कोयला बहुत ज्यादा हम बाहर से मंगा रहे हैं, जबकि कोयला का तीसरा भंडार सबसे बड़ा हमारे अपने देश में है, तो हम गोल्ड पर थोड़ा सा इंपोर्ट कम कर दें, उस पैसे को हम बचा सकते हैं और उसको फिर पूंजी में तब्दील करें, यानी कि अपने औद्योगिक विकास में लगाएं, कैपिटल में कन्वर्ट कर दें। हम अपने कोल, जो स्वदेशी कोल है, उसके उत्पादन पर, उसके खनन पर हम ध्यान दें। फिर उन्होंने बकायदे टूरिज्म सेक्टर की बात कही है कि हम विदेश घूमने जाने पर 10-20 अरब डॉलर खर्च करते हैं, तो हम अपने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दे करके इसे बचा सकते हैं। फिर उन्होंने एजुकेशन की बात भी कही कि हमारे यहाँ IIT हैं, हमारे यहाँ IIM हैं, ISB हैं, इस तरह की और संस्थाएं खोल करके हमारे जो स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाते हैं, जिसके लिए हमें डॉलर देना पड़ता है, हम उस पैसे को बचा सकते हैं। बल्कि अगर हमारे यहाँ विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे, तो उससे हमारी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो काफ़ी कुछ बढ़ेगा। और इसी तरह से उन्होंने बात कही है इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर, कि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि मोबाइल हैंडसेट के लिए भारत ने क्या किया है कि विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया है और कहा है कि आप यहीं बनाइए, हमारे यहाँ ही मोबाइल हैंडसेट तैयार कीजिए। देखिए, विदेशी कंपनियाँ जब भारत में आ करके बनाएंगी तो रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, यहाँ के जो दूसरे छोटे छोटे उद्योग उससे जुड़े हुए होते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो हम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर से मंगा रहे हैं, उसके लिए भी ये जो मोबाइल हैंडसेट का पैटर्न हमने अपनाया है वह अपनाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन अच्छे पॉइंट्स को नोट कर लें। अभी जब मैंने बताया है तो आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और आपको ये लग रहा होगा कि इसे क्या नोट करना है, ये तो हमें याद रहेंगे। लेकिन मित्रों, वो भ्रम की बात होती है, याद जरूर रहेंगे लेकिन जब जरूरत पड़ेगी उस समय हो सकता है कि याद ना आए। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम कुछ तथ्यों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें मालूम पड़ते हैं उन्हें लगातार रिवाइज करते रहें, और रिवाइज करना तभी संभव होगा जब आप उन्हें नोट कर लेंगे। तो अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है अपसपा कानून। देखिए, अपसपा कानून क्या है और क्यों मैंने इस विषय को चुना है। आपने सुना न्यूज में भी और अखबारों में भी, मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि 30 दिसंबर 2019 से नागालैंड में यह कानून लागू है, इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, 6 महीने यह कानून और लागू रहेगा। तो हम थोड़ा सा इस कानून के बारे में जान लेते हैं। अफसपा, AFSPA, मैं रिपीट कर रहा हूं, AFSPA, इसको जब आप मिला देते हैं तो हो जाता है अफसपा। ए का मतलब है आर्म्ड, एफ का मतलब है फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सैन्य बल, हिंदी में हो जाएगा सैन्य बल, ब्रैकेट में है स्पेशल पावर्स, विशेष अधिकार, स्पेशल पावर्स, ब्रैकेट क्लोज, एक्ट, कानून। तो हो गया ये अफसपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, और यह है 1958 का बना हुआ यह कानून है। जवाहरलाल नेहरू जो समय हमारे प्रधानमंत्री थे, और इस कानून को बनाया इसलिए गया था कि उस समय जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे उनमें अशांति की स्थिति ज्यादा होने लगी थी, तो वहां जो आर्म फोर्स थी, मतलब वहां जो डिस्टरबेंस हो रहे थे, तो डिस्टरबेंस को देखिए कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो हाथ हैं, पहले है वहां की पुलिस फोर्स और दूसरी होती है आर्म फोर्स। तो जब पुलिस फोर्स किसी बात को कंट्रोल नहीं कर पाती तो फिर वहां आर्म फोर्सेस भेजी जाती हैं। तो चलिए, पुलिस फोर्स और जो वहां के सिविलियंस हैं उनको हम उधर मान लेते हैं, तो यूं कह लीजिए कि जो आर्म फोर्स हैं उनको वहां जो सिविलियन फोर्सेस हैं या जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए भेजा जाता है, और ऐसी स्थिति में जो आर्म फोर्स है उनकी मदद भी करते हैं। तो इनफैक्ट ये जो आर्म फोर्स के लिए जो ये कानून बनाया गया था, इसका उद्देश्य ही था कि वहां की जो हमारी नागरिक व्यवस्था है उन नागरिक व्यवस्था की मदद के लिए आर्म्ड फोर्स को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं। और इस कानून को लेकर के लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। नागालैंड और दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनमें भी कभी कभी और भी लगाए गए हैं, फिर वहां से हटा भी दिया जाता है स्थिति को देखते हुए, लेकिन नागालैंड में बहुत लंबे समय से ये जारी है। आलोचना भी इसकी होती है, इसको हटाए जाने की मांग भी होती है, लेकिन सरकार के लिए हटाना उतना आसान नहीं है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 2-3 साल पहले मेंस में इसके बारे में पूछा भी गया है। अब मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूंगा कि इस कानून में क्या अधिकार आर्म फोर्स को दिए जाते हैं जिसके लिए आलोचना होती है। देखिए, सामान्यतः जो अधिकार दिए जाते हैं वो सेना को दिए जाते हैं, आर्म फोर्स के लिए विशेष अधिकार है ना, सेना को दिए जाते हैं, पुलिस को नहीं। और इसके तहत सेना को ये अधिकार होता है कि वो कहीं भी अगर उसको लगता है कि यहां इस कानून को लागू करना चाहिए तो कह सकते हैं कि यहां 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये आदेश सेना दे सकती है। सामान्यतः ये अधिकार किसके पास होता है? सिविलियंस के पास होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास होता है, लेकिन वो अधिकार सेना को दे दिया गया है। दूसरा ये है जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है, वो ये है कि जिन क्षेत्रों में ये लागू हो जाता है, यह विशेष अधिकार, ये कानून लागू हो जाता है, वहां फिर सेना के पास ये अधिकार होता है कि वो बकायदे बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, सामान्य स्थिति में क्या होता है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं तो आपके पास वारंट होना चाहिए, यानी कि गिरफ्तारी का आदेश होना चाहिए, लेकिन वो बिना आदेश के भी गिरफ्तार कर सकती है। अगर वो आदेश की प्रतीक्षा करती रहेगी और उस प्रक्रिया में रहेगी तो हो सकता है कि स्थिति कुछ ज्यादा खराब हो जाए, तो सेना को यह विशेषाधिकार दिया गया है। तो अब कभी कभी लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि सेना इसका दुरुपयोग करती है, इसका आधार लेकर के वो किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, तो ये आरोप लगते हैं, इसीलिए ये कानून विवाद का कारण भी बनता है। अगला जो अधिकार होता है, जो मैं केवल बहुत ही जो महत्वपूर्ण अधिकार है केवल उनकी बात कर रहा हूं, वो ये है कि जैसे कि सेना ने चेतावनी दी, किसी को भी चेतावनी दी या भीड़ वहां इकट्ठी है उसको उसने कुछ चेतावनी दी, लेकिन लोग चेतावनी नहीं सुन रहे हैं या यूं कह लीजिए कि चेतावनी का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सेना को यह अधिकार होता है कि वो बकायदे वहां गोली चला दे, किसी को भी गोली मार दे। अब आप सोचिए कि ये तो उस तरह से आप देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत ही विचित्र सा अधिकार है, ये तो तानाशाही का अधिकार है, लेकिन जो अशांत क्षेत्र होते हैं वहां इसकी आवश्यकता समझी गई। इसको भी लेकर के बहुत आलोचनाएं होती हैं कि सेना इसका नाजायज फायदा उठाती है, जिसकी भी मर्जी होती है उस पर गोली चला देती है, लेकिन चलिए जो भी हो। ठीक इसी प्रकार से एक और भी अधिकार सेना को मिलता है और वो ये है कि वह किसी के घर में भी तलाशी ले सकती है जाकर के बिना वारंट के, बिना वारंट के वो तलाशी भी ले सकती है और बिना वारंट के वो किसी को गिरफ्तार भी कर सकती है। तो ये जो 3-4 बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस कानून से संबंधित हैं वह मैंने आपके सामने रखे हैं ताकि इस कानून के बारे में आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन बन जाए। और मुझे लगता है कि अब यह कानून आपकी समझ में आ गया होगा। जहां तक बात इसकी है कि वो नागालैंड में क्यों फिर से बढ़ाया गया या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कभी कभी क्यों दूसरे राज्यों में भी लगा दिया जाता है, तो उसका मुख्य जो कारण है मित्रों केवल कुल मिलाकर कि यह है कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं उसके खासकर कुछ राज्य खासकर उग्रवादी गतिविधियों से ज़्यादा अशांत रहते हैं। कुछ सीमा पार से भी कुछ ऐसी स्थिति होती है, जैसे अगर आप नागालैंड को देखेंगे तो विदेश से उसकी सीमा केवल म्यांमार से मिलती है और म्यांमार के बीच का कुछ हिस्सा जो है काफी कुछ जंगली हिस्सा है, वनीय क्षेत्र भी है, तो तस्करी के भी मामले होते हैं, सामान की तस्करी होती है, कुछ आतंकवादियों की घुसपैठ के भी मामले होते हैं, कुछ मानव तस्करियां भी होती हैं, यानी कि इस तरह के जो अराजक तत्व हैं वो भी इस तरह के उग्रवादी गतिविधियों को आप कह लीजिए कि उकसाते रहते हैं। और वहां की अपनी कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जो इनफैक्ट अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानती, तो उनमें एक इस तरह की भावना भी है कि हम भारतीय नहीं हैं तो हम भारत में क्यों रहें, तो अलगाववादी आंदोलन भी होते रहते हैं। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट हैं वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखते हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की जो इस तरह की अशांति की स्थिति है, इस पर आपको अलग से भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, उन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं विक्रम पाल और भारती साहू, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही, इससे पहले कि मैं आज के डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की घोषणा करूँ, मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें, मेरा अभिवादन भी स्वीकार करें। नमस्कार।